Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om. Adiguru भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक स्तोत्र ग्रंथ पर आधारित भगवान शिव के भक्ति संबंधी कुछ प्रसंगों को हम श्रवण कर रहे हैं। अभ्यास के लिए 34वां श्लोक। किं रोमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवत् धैर्यं चेदृशात्मनः स्थितिरियं चान्यै कथं लभ्यते ब्रश्यद्देवगणं त्रसन्मुनिगणं नश्यत् प्रपञ्चं लयम् पश्यन् निर्भय एक एव विहरत् त्यानंद सान्द्रो भवान् योगक्षेम दुरंधरस्य सकलः श्रेयप्रदोद्योगिनो दृष्टा दृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम् भक्ते भक्तिगुणावृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मना कुंभे सांब तवांग्रि पल्लव युगम संस्थाप्य संवित फलम तत्सत्त्वं मंत्र मुदीरयन् निज चरी रागार शुद्धिं वहन् पुण्यहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् आम्नायां बुद्धिदमादरेण सुमन संस्था संगास्मरमुद्यम मुद्यन्मनो मन्थानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः सोमं कल्पतरुं सुपर्णसुरभिम् चिन्तामणिं धीमतां नित्यानन्दसुधां निरन्तररमा सौभाग्यमातन्वते किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवत् धैर्यं चिदृश आत्मना स्थितिरियम् चान्यहि कथं लभ्यते ब्रश्यद्देवगणं त्रसन्मुनिगणं नश्यत् प्रपञ्चं लयं पश्यन् निर्भय एक एव विहरत् त्यानन्दसान्द्रो भवान् शम्भो संबोधन है शम्भो दूसरा संबोधन है पशुपति भो पशुपति हे पशुपति सम्यक भवति इति शम्भो कल्याणम भवति इति शम्भो सम का अर्थ कल्याण स्मरणकर्ता का कल्याण करने वाले होने के कारण स्मरकर्ता को कल्याण होने के कारण शम्भो शम अर्थात कल्याणम भवति विष्णु सहस्र नाम में श्लोक आता है யஸ்ய ஸ்மரண மாத்திரேண ஜன்ம சம்சார பந்தனாத் விமுச்சதே. ஜிஸ்கே கேவல் எக் மாத்திர ஸ்மரண சே ஜீவாத்மா கா சமக்ர ஜன்ம சம்சார், ஜன்ம மிருத்யு ரூபீ ஜோ சம்சார ஹே, உஸ் பந்தன் சே உஸ்கா முக்தி ஹோ ஜாதா ஹே, வோ சுட்காரா பா ஜாதா ஹே. இசி தர சம்பு சப்த கா அர்த்த பி யஹி ஹே கி சம்பு கா ஜோ ஸ்மரண கர்த்தா ஹே உஸ்கா ஜன்ம சம்சார பந்தன் சே சுட்காரா பானா ஹி கல்யாண ஹோனா ஹே. तो ये शंभो अर्थ शब्द का अर्थ होता है, सम्यक सम कल्याणम भवती इति शंभो. पशुपते, इसकी व्याख्या बहुत हुई है, पशुओं के पति पालन करता, जीव मात्र के पालन करता है. नाम है पशुपति, व्युत्पत्ति हुआ है जीवों के पालन करने वाले. और भगवान शिव के बारे में एक धारणा ये बन गई कि वह संहार के देवता हैं, जबकि नाम से ये अर्थ निकलता है कि सबका पालन करने वाले देवता हैं. देखो, एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा अलग अलग नहीं होते. संसार में परमात्मा अलग अलग नहीं होते, भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है. खाली नाम और रूप अलग अलग हैं, वो राम और रूप अलग होने में कारण है त्रिगुण, माया के तीन गुण. उसके चलते ही परमात्मा में नाम और रूपता की भिन्नता सिद्ध होती है, अन्यथा परम तत्व तो एक ही है भाई. तो पुष्पदंताचार्य जी इस रहस्य को प्रकट करते हैं शिव महिमने स्तोत्र में. बहुल रजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः. जिस समय, हे शिव, हे परमात्मा, जिस समय प्रकृति अर्थात माया, माया के जो गुण हैं रजगुण, रजोगुण की अधिकता से, बहुल रजसे अत्यधिक रजोगुणता, रजोगुण रजो प्रदान उपाधि बनाते हैं आप, तभी संसार के उत्पत्ति करने में समर्थ होते हैं. तब उस समय आपका नाम पड़ जाता है भव, व्यक्ति वही है. उस समय आपका नाम होता है भव. किस समय? बहुल रजसे विश्वोत्पत्तो, विश्व उत्पत्ति में जब आप कारण बनते हैं, और विश्व उत्पत्ति में कारण आप तभी बनेंगे जब माया के एक गुण, तीन गुण मध्य एक गुण रजोगुण प्रधान उपाधि को धारण कर लेते हैं, तब आप, आपका नाम हो जाता है भव. प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमः. इसी तरह जब प्रकृति अर्थात माया के तीन गुण मध्य जो तमो गुण है, वो तमो गुण जब प्राबल्य होता है यानी अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है, और उस तमो वृद्धि वाला तमो उपाधि को आप जब अपना उपाधि बना लेते हो, तो उसके चलते तत्संहारे हराय नमः, उसी सृष्टि का आप संहारकर्ता बन जाते हो, तो उस समय आपका नाम हो जाता है हरा, संहरणात हरा. और वो काम होगा माया के तमोगुण के माध्यम से. सत्तोद्रिक्तो मृणाय नमो नमः. जिस समय आपके उपाधि सत्तोगुण उद्रेक होता है यानी अत्यधिक होता है, अत्यधिक सत्तोगुण वाले उपाधि को बनाते हो, तो उस समय जन सुख कृते, आप संसार में जितने भी पैदा हुए हुए जीवात्मा हैं, देह की उपाधि से जन्मे हुए जीवात्मा हैं, उन सब जन, जन शब्द का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है, उपाधि को लेकर जो पैदा हुआ है वो सब जन, चींटी भी जन है, हाथी भी जन है, ब्रह्मा भी जन है, प्राणी मात्र देह उपाधि वाले जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सबको जन कहा है, क्योंकि देह के माध्यम से प्रादुर्भाव आविर्भाव हुए हैं। जनि प्रादुर्भावे धातु से जन शब्द बनता है और जनि प्रादुर्भावे धातु से ही जन्म शब्द बनता है। प्रादुर्भाव अर्थ में जनि धातु है व्याकरण के हिसाब से, यानी अव्यक्त को व्यक्त करने का माध्यम प्रादुर्भाव है, अव्यक्त को व्यक्त करने का माध्यम। आप इस शरीर के माध्यम से ही प्रकट हुए और दिखाई देने लग गए और आपके साथ तमाम व्यवहार इसी शरीर के माध्यम से होता है, अन्यथा इस शरीर को ग्रहण करने से पहले आप होते हुए भी आपकी कोई प्रतीति नहीं थी, अनुभूति नहीं थी, आप थे, हाँ, अन्न में थे, जल में थे, है? आप थे, आपका अस्तित्व था, अन्यथा गीता में ये बात न कहते भगवान श्री कृष्ण, नासतो विद्यते भाव सर्वथा असत, जो खपुष्प है, सशश्रृंग है, बंध्यापुत्र है, उसका किसी भी काल में भाव यानी प्रतीति अस्तित्व होना संभव ही नहीं है। और सता अभावो न विद्यते, जो अस्तित्व वाला है उसका अभाव कभी भी नहीं होता है। तो खाली अप्रतीति को अभाव नहीं मान सकते, वस्तु के अप्रतीति को अभाव नहीं मान सकते, वस्तु का अस्तित्व है लेकिन प्रतीत हो नहीं हो रहा है। इसी को पाणिनीय व्याकरण में एक सूत्र आया, अदर्शनम लोप, अदर्शनम लोप, वो लुप्त तो हो गया, किस प्रकार से अदर्शनात्मक लोप हुआ, तस्य लोप माने वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। दो सूत्र हैं, अदर्शनम लोप, तस्य लोप इत्यादि, हमेशा के लिए खत्म करना वो तस्य लोप, और अस्तित्व रहे लेकिन दिखे नहीं वो लुप्तता, उसी को अव्यक्त कहते हैं। लेकिन वो भाव था, लेकिन व्यक्त हुआ किस माध्यम से, आप जो खा रहे थे रोटी उसी में आप थे, पी रहे थे पानी उसी में आप थे, हर चीज में आप थे, जल अन्न आदि के सम्मिश्रण से, उसी भुक्त अन्न जल का रस और रस वीर्य से आपके शरीर का निर्माण हुआ और शरीर प्रादुर्भाव हुआ, तब फिर लोग कहने लगे जन्म हुआ। क्या हुआ? बोले बेटा पैदा हुआ, जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, जनि प्रादुर्भाव है, उसी का अर्थ से जन हुआ। जन माने समस्त प्राणी, प्राणी का अर्थ देहो उपाधि वाले सभी का, आप जन सुख कृते, सभी प्राणियों को किसी न किसी माध्यम से आप सुख प्रदान करते हो तो सत्तो दृप्त होता है, तभी आप सबको सुख प्रदान करने वाले के रूप में मृड नाम वाले हो जाते हो। पौराणिक भाषा में मृड का नाम होता है विष्णु, भव का नाम होता है ब्रह्मा, हरा का नाम हो गया रुद्र, रुद्र, लेकिन एक ही परमात्मा का नाम है, ये भव मृड रुद्र एक ही परमात्मा का नाम है। गुण भेद से नाम भेद, कर्म भेद हुआ, और गुण भेद से कर्म भेद हुआ, कर्म भेद से नाम भेद हुआ, लेकिन व्यक्ति एक ही है। आप जब गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठते हैं तो उस कर्म के चलते आपका नाम हो जाता है ड्राइवर, व्यक्ति तो वही है, स्टीयरिंग बैठकर जब ड्राइव करता है तो उसका नाम क्या हुआ? ड्राइवर। जब आप रसोई में खड़े होकर विविध प्रकार के आइटम को जब पकाने लगते हो तो आपका नाम हो जाता है पाचक, पकाने वाला पाचक, हाँ तो हाजमोला नहीं है फिर, पाचक का शब्द फिर हाजमोला समझ लोगे, पकाने वाला, पचाने वाला, पचाने वाला हाजमोला, पकाने वाला पाचक आप है? तो आप किचन में खड़े होकर जब पकाते हैं तो आप पाचक हो जाते हो। जब आप पढ़ाने लगते हो किसी को तो फिर आप टीच कराते हो तो टीचर, पढ़ाने लगते हो तो मास्टर, शिक्षा देने लगते हो तो शिक्षक। नाम का फर्क है। ड्राइवर कहां ड्राइवर और कहां शिक्षक, कहां डॉक्टर, देख लो कर्म भेद है। कथाकार ले जी, जहां कथा करने लग गए तो उसका नाम क्या हुआ, कथाकार, व्यक्ति एक ही है। तो क्रिया के चलते कर्म के चलते उसके नाम भिन्न भिन्न हो गए, व्यक्ति यही है। पुष्पदंत आचार्य जी ने स्तुति के माध्यम से भगवान को कहा, प्रमहसि पदे निस्त्रेर गुणे शिवाय नमः। जब तीनों गुण और तीनों गुण के उपाधि और उपाधि जन्य कर्म, इन सब से आप जब अलग असंग हो जाते हो तो उस समय आप शुद्ध शिव रूप रहते हो। गुणातीत अवस्था में आप शिव रूप रहते हो, वही शिवा। रजोगुण अवस्था में सृष्टिकर्ता बनकर भव बन जाते हो, तमोगुण के उपाधि चलते संहार करता हर बन जाते हो, सत्वगुण के उपाधि के चलते पालन करता सुख प्रदान करता जन सुख कृते मृड, आप मृड बन जाते हो। ऐसे जो आपको मैं प्रणाम करता हूं इत्यादि, एक ही तत्व का ये भेद है। तो शंकराचार्य जी यहां दो संबोधन कर रहे हैं, एक तो पशुपति, पशुपाति इति पशुपति, पाणी पशुओं की रक्षा करे, पांच पासों से जो बंधा हुआ जीव है उसी का नाम पशु, इसकी व्याख्या हो चुकी है। किं रोमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शंभो भवद्धैर्यम्। हे पशुपति, आपकी साहस का हम कैसे वर्णन करें, दुनिया में आप जैसे साहसी पुरुष, साहसी व्यक्ति, हिम्मतवार व्यक्ति हमने कहीं नहीं देखा है। क्या साहस है आपकी। किं रोमस्तव साहसं कस्यास्ति शंभो भवत्, आपके जैसा साहस दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो साहस न विष्णु के पास है, न ब्रह्मा के पास है, न इंद्र के पास है, न किसी कुबेर आदि के पास है। अद्भुत साहस है आपके पास, और आपके पास जो साहस है, हिम्मत है, कहना पड़ेगा उस साहस के। इससे यही सिद्ध होता है कि महाराज जगत शब्द स्पर्श रूप रस ये पांच विषयों से भरा हुआ होने के कारण जगत पूरा का पूरा विषमय है, और उस विष का धैर्यता पूर्वक सेवन करने के साहस आपने ही दिखाई है। तो ये महाराज, ये संसार के जो विषय प्रारब्ध जब तक रहेंगे तब तक इस विषयों का सेवन करना ही पड़ेगा। कोई कहे प्रारब्ध में है और वह मैं सेवन नहीं करूं तो वो संभव ही नहीं होगा। सेवन तो करना पड़ेगा, प्रारब्ध में है, भोगना है तो भोगना ही पड़ेगा। तुम लाख कोशिश करो बचने की, नहीं बच सकते हो। तो विषय सेवन ही विष सेवन है, और बहुत लोग उसको सेवन नहीं कर पाते हैं और जीवन में हताश होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। प्रारब्ध भोग नहीं कर सकते इसलिए घबरा जाते हैं, डरते हैं। भोगना है तो भोगना है, साहस करके भोगो भाई। इस श्लोक से यही सिद्ध होता है कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो साहस मेरे जीवन में भी आवे। आपका जैसा साहस नहीं चाहिए, कम से कम प्रारब्ध भोगने का हिम्मत तो मुझे दे दो महाराज। हाँ, विष सेवन करने के साहस तो मुझमें नहीं होगी, शायद मुझे विष सेवन करना भी न पड़े, और करना ही पड़ रहा है। प्रारब्ध जब तक है तो विष सेवन तो करना ही पड़ेगा, उस समय अलग नहीं हो सकता हूं, लेकिन घबराता हूं मैं। विषय सेवन से मैं घबराता हूं, तो परिणाम हो गया, एक तो होता है प्रसन्नता पूर्वक भोगना, दूसरा होता है दुखी होकर भोगना। दुखी होने से भोगना न पड़े तब तो महाराज मैं भी दुखी होता। बोलो, दुखी होने से भोगना पड़ता है कि नहीं? कहीं लिखा हुआ हो दुखी होने पर रोने पर भोगना नहीं पड़ता है? वियोग जन्य जो दुख है उस दुखी दुख से दुखी होने पर रोने पर बैठे बैठे रोने पर वियोग जन्य दुख भोगना नहीं पड़ेगा। तब तो ठीक है भाई, हम भी बैठे बैठे रोते रहेंगे भाई, हाय वो चला गया, हाय वो चला गया। तो क्या दुखी होने पर वियोग जन्य दुख भोगना नहीं पड़ेगा है? भोगना तो फिर भी पड़ेगा। अच्छा, प्रसन्न होते हुए भोगोगे तो वियोग जन्य, वियोग तो वियोग हो गया, चाहे प्रसन्नता पूर्वक हो, अच्छा हुआ भागी जंजाल, सुखी भजिए श्री हरि गोपाल, ले उर्वया है, अच्छा हुआ भागी जंजाल, भलो थयो भागी जंजाल। नरसिंह मेहता कैसे भोगे वियोग को, कैसे भोगे नरसिंह मेहता ने? बोलो, पत्नी वियोग को नरसिंह मेहता ने कैसे भोगा? प्रसन्नता से, धैर्यता से, साहस से। और हम कैसे भोग रहे हैं, कैसे भोगा और भोग रहे हैं, हैं? लियो जी, धैर्य नहीं, साहस नहीं है, रोने लग जाते हैं छोटी सी बात को लेकर, दुखी हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, क्या आनंद का वातावरण, तो गमगीन बना देते हैं, लियो जी, मजा ही खत्म कर देते हैं। किम रोमस्तव साहसम पशुपते कस्यास्ति संभो भवद्धैर्यम् च ईदृश दृशम आत्मनः स्थितिरियं चान्यैः कथम लभ्यते। तो प्रारब्ध भोगने का साहस देना महाराज। प्रारब्ध भोग के बारे में एक कहानी सुना दूं मैं तुम लोगों को, है ना? मैंने सुनाया है समय समय में वो कहानी, फिर भी आप लोग भूल जाते हो, इसलिए हमको सुनाने का अवसर मिल जाता है। ये कोई चेला था और गुरुजी प्रारब्ध के बारे में बता रहे थे, कर्मों के बारे में बता रहे थे चेले को कि बेटा कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रियमाण कर्म, जिस समय व्यक्ति कर्ता भाव से कर्म कर लेता है, फलाशक्ति से और कर्माशक्ति से कर्म करता है, उस समय के उस कर्म का नाम हो जाता है क्रियमाण कर्म। क्रियते इति कर्म, जो चेष्टा करेगा उसका नाम कर्म हो गया भाई। उसी में से आसक्ति फलाशक्ति कर्माशक्ति करता है और उस आसक्ति के चलते वह कर्म दृष्ट फल देता है और कुछ अदृष्ट फलात्मक होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं तत्काल कर्म किया उसका फल तत्काल मिलता है, उन कर्मों को दृष्ट फलात्मक कर्म कहते हैं, वो क्रियमाण कर्म ही है। क्रियमाण कर्म दृष्ट फलात्मक होते हैं और क्रियमाण कर्म अदृष्ट फलात्मक होते हैं। जो अदृष्ट फलात्मक क्रियमाण कर्म है उसी को संचित कर्म कह देते हैं। समझे कि नहीं? तो गुरु जी समझा रहे थे तुमको, जैसे हम समझा रहे हैं। समझ गए? नहीं समझे? समझने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। तो दृष्ट फलात्मक अदृष्ट फलात्मक, जो अदृष्ट फलात्मक क्रियमाण कर्म है वही संचित होता है, उसको संचित कर्म कह दिया जाता है। और जो कर्म संचित रहता है वही जब परिपाक होता है और फल देने के लिए उद्भूत होता है तब फिर उसका नाम हो जाता है प्रारब्ध। इन तीन प्रकार के कर्म में से दृष्ट फलात्मक तत्काल भोग लिया, खत्म हो गए,